टिंकेश कुमार की आवाज में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान स्वतंत्रता संग्राम अध्याय भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि तथा उपलब्धि का वर्णन करें। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन के पतन के पश्चात हुआ। भारत में स्वतंत्रता के लिए दो समानांतर आंदोलन चल रहे थे, एक संवैधानिक आंदोलन जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी तथा दूसरा हिंसात्मक संघर्ष जिसको क्रांतिकारी विचारधारा के लोग चला रहे थे। इस युग विचारधारा के राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जा सकता है। जब स्वदेशी आंदोलन भी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हुआ तथा सरकार का दमन चक्र लगातार बढ़ता गया तथा उग्र विचार वाले तरुण भारतीयों ने एक नए विचारधारा का सूत्रपात किया। साधना के बारे में उनका विश्वास था कि पाश्चात्य साम्राज्यवाद केवल हिंसात्मक तरीके के प्रयोग से ही समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए इन लोगों ने आयरलैंड के इतिहास से प्रेरणा ली तथा गुप्त संगठन बनाए। समकालीन कई भारतीय पत्रिकाओं के अपने ओजस्वी लेखों से इनको प्रेरित करते रहे। यथा तिलक ने मराठा में लिखा, गीता में भगवान कृष्ण ने बताया था कि अपने बंधुजनों तथा गुरुजनों की भी हत्या कर दो, यदि कर्म फल से रत होकर कोई अपराध की जाती है तो उस कर्म में कोई दोष नहीं है। गरम दल वालों द्वारा आंदोलन की कमियों का विश्लेषण करने तथा इस गतिरोध में से बाहर निकलने के लिए नए रास्ते सुझाने में असफलता के कारण इस भावना को और बल मिला। इसका नेतृत्व करने वाले एक वर्ग जिसमें अरविंद घोष भी थे का इनका समर्थन था। क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिलने का एक कारण सरकार की क्रूर दमनात्मक गतिविधियां भी थी। 20 अप्रैल 1906 को बरिसाल में राजनीतिक कांग्रेस में शामिल निहत्ते शांति प्रिया भीर को पुलिस बलों ने बल प्रयोग किया। इस बारे में युगांतर को ने निकाला था, बल को बल से ही रोका जाना चाहिए। इस क्रांतिकारी दल में भारत के विभिन्न अंगों के वीर सपूत नवयुवक भारत माँ के लाडले थे, जिन्होंने परतंत्रता के बेरियों में जखड़ी भारत माता के करुण पुकार को सुनकर अपना तन मन तथा धन सभी अर्पित कर दिया। क्रांतिकारियों ने अपने जान की परवाह नहीं की तथा उनका दिल परतंत्रता के इस अपमानजनक बंधन को तोड़ फेंकने पर उद्धृत हो गया। उन्होंने साम्राज्यवाद के खात्मे के लिए हिंसात्मक कार्यवाही को अपनाया, यद्यपि वे जानते थे कि साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए जनता द्वारा हथियारबंद बगावत आवश्यक थी। उन्हें इस काम की कठिनाई, विशेषकर सेना की वफादारी को खत्म कर देने के मुश्किलों का भी पूरा एहसास था। इसलिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, ब्रिटिश अधिकारियों विशेषकर जो बदनाम हो की हत्या करना। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि सरकारी अफसरों में दहशत फैल जाए, लोगों में उदासीनता तथा डर हो जाए तथा उनकी राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। क्रांतिकारियों की असली शुरुआत अप्रैल 1908 में मानी जाती है, जब खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी में बम फेंका। किंग्सफोर्ड तो बच गया परंतु दो निर्दोष महिलाएं मारी गई। इससे पहले पूना में चिपलेकर बंधुओं ने 1904 में बी डी चिपलेकर बंधुओं ने दो अंग्रेज अधिकारियों की हद्दा कर दी। 1904 में बी डी सावरकर ने मित्र मेला तथा अभिनव भारत जैसी गुप्त समितियां गठित की। 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर कातिलाना हमला हुआ, सरकार का दमन चक्र भी चलता रहा। चिपलेकर बंधुओं को फांसी पर लटका दिया गया, खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अरविंद घोष, बरिंद्र घोष, बी डी सावरकर आदि को देश निकाले की सजा दी गई। इस कारनामों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के नंगे कृत्य की झलक मिलती है, जिसमें उन्होंने मानवता का परित्याग कर दिया। अंग्रेजी सरकार के दमन के विरोध के स्वरूप अनेक हत्याएं हुई, डकैतियां डाली गईं, काकोरिया स्टेशन पर सरकारी खजानों को लूट लिया गया। जनता भी इनके कारनामों से कुछ आस जगी, अतः इस आंदोलन को जन समर्थन भी हासिल हुआ। सूरीसोन सेन ने चिटगांव सस्तागर पर धापा बोलकर सरकारी अस्त्र लूट लिए। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ बन गया। वे भारतीयों को 1000 रुपये का वजीफा इंग्लैंड में विद्या अध्ययन के लिए देते थे तथा वे इंग्लैंड में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार कर रहे थे और भारतीय क्रांतिकारियों को उनका समर्थन प्राप्त था। अमेरिका में लाला हरदयाल गदर पार्टी के माध्यम से विचारोत्तेजक लेख तथा विचार प्रकाशित कर जन भावना उभारने का काम कर रहे थे। आंदोलन के विकास के साथ साथ सरकारी दमन चक्र गतिविधियां भी तेज कर दी गई। कुल मिलाकर 1908 से 1918 के बीच 186 क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान चालू हुआ, जब अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को बिना चाहे ही युद्ध में धकेल दिया। भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय युद्ध में धन खर्च किया जाता था, जिससे इन तरुण भारतीय युवकों ने विरोध किया। आंदोलन का तीसरा चरण 1921-22 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के पश्चात शुरू हुआ। राजनीतिक शून्यता के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न हुआ। इस काल में इस आंदोलन ने अपनी यौवनावस्था को प्राप्त किया। गांधी जी पर यह आक्षेप लगाया गया कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तब उन्होंने इसे वापस लेकर छल किया है, अतः जनभावना इन क्रांतिकारी युवकों के साथ जुड़ गई, क्योंकि उन्हें भी एक नेतृत्व की जरूरत थी। ये क्रांतिकारी 1919 की जलियांवाली बाग की कांड से भी खार खाए बैठे थे। उन्होंने आंदोलन के इस चरण में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी इत्यादि की स्थापना हुई तथा इन्होंने जन भावनाओं को उभारने के लिए तरुण लोगों को देश प्रेम की दीक्षा दी, अपने देश पर न्यौछावर होने की प्रेरणा दी। इन लोगों ने हथियार बांटे, हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया तथा बम बनाना सिखाया। यूरोपीय लोगों की हत्या करके इन लोगों ने उनका मनोबल कम करने, प्रशासन ठप करने तथा स्वतंत्रता के विरोधी भारतीयों तथा यूरोपियों को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हत्या करना, डाका डालना, बैंक डाकघर तथा रेलगाड़ियां लूटना सभी उनके लिए वैध था। प्रारंभिक काल में क्रांतिकारी साम्राज्यवाद का अंत चाहते थे, परंतु उसके पश्चात भारत में कौन सी व्यवस्था लागू होगी इसकी उनके पास कोई योजना नहीं थी। परंतु हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, जिसके सदस्य भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल, भगवती चरण वर्मा, राजगोपाल, सुखदेव, राजगुरु आदि थे, ने समाजवादी संकल्पना को आधार प्रदान किया। इन क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। भगत सिंह, गोटुकेश्वर दत्त, राजगुरु संसद में बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी दी था। इन्हें लाला लाजपत राय की हत्या के लिए उत्तरदायी, अंग्रेज अधिकारी की हत्या जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है में फांसी दी गई। सचिंद्र सन्याल को कल्ले पाने की सजा दी गई तथा बाद में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से जूझते हुए अपने आप को मातृभूमि के हवाले कर दिया। सतही तौर पर देखने में लगता है कि राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन विफल रहा। उसकी सभी योजनाएं या तो कार्यान्वित न हो सकी या फिर साम्राज्यवादियों ने उसको असफल बना दिया, किंतु यह क्रांतिकारियों के योगदान का सही मूल्यांकन नहीं है। एम एन दास के अनुसार, कांग्रेस ने साम्राज्यवादी शासक को चिंतातुर बना दिया, परंतु क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। आगे उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा है, यदि उनकी एक के बाद एक लहर आती है और चली जाती है, इस महाद्वीप पर बिखरे हुए मुट्ठी भर अंग्रेजी नाराज आतंकवादियों के हमले को अधिक समय तक नहीं रोक पाते और आजादी वास्तव में जिस समय मिल सके उसे बहुत पहले मिल जाती। क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका की विवेचना करते हुए बिपिन चंद ने स्वीकार किया है कि इस आंदोलन की अपनी सीमाएं थी, यह जन आंदोलन नहीं था तथा न ही व्यापक जन समर्थन जुटाने में और न जनता को राजनीतिक रूप से उद्वेलित करने व आजादी के संघर्ष में खींच कर लाने में सफलता मिली। लेकिन इस सब के बावजूद राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में इनका योगदान अमूल्य है। इनका अनन्य राष्ट्र प्रेम, अनन्य साहस, अटूट प्रतिबद्धता, गौरवमय बलिदान तथा जान न्यौछावर कर देने वाले संकल्प भारतीय जनता के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। भारत में समाजवादी विचारधारा, राष्ट्र प्रेम तथा अपने संस्कृति के सम्मान के प्रचार प्रसार में इनका अमूल्य योगदान और अतुलनीय है।